दूसरा सैमुएल अध्याय एक। पहला सैमुएल की पुस्तक इसराइल पर शौल राजा के शासन काल का इतिहास है, जो पेरिस्तियों के हाथों शौल की मौत के साथ समाप्त होता है। शौल एक ऐसे इंसान की दुखद जीवनी है जो सद्गुणों से पूर्ण था, साथ ही उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए अनेक सु अवसर प्राप्त थे, परंतु उसका जीवन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। उसने अपनी क्षमताओं की परिपूर्णता को प्राप्त नहीं किया था। उसका जीवन असफल रहा क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के अधीन नहीं किया था। भविष्यद्वक्ता शमूएल ने उसे कहा था, तुमने परमेश्वर का अधिकार अपने ऊपर अस्वीकार किया। और यही शौल की सबसे बड़ी चूक थी। उसने अपने जीवन पर परमेश्वर का अधिकार स्वीकार नहीं किया था। वो एक दृढ़ इच्छा वाला निरंकुश और स्वे इच्छाचारी व्यक्ति था, जिसके कारण वो उन बातों को प्राप्त नहीं कर पाया जो उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के निमित्त थी। ये एक असफल जीवन की कहानी है। वो पिलिस्तियों के हाथों मारा गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और बेतशान के मंदिर की दीवार पर लटकाया गया। तब गिलाद के योद्धाओं ने आकर उसे उतारा और यर्दन की दूसरी तरफ दफनाया। अब ये सत्य है कि गिलाद वाले याबेश के वीर पिलिस्ती की सीमा में प्रवेश करके शौल और उसके बेटों के मृतक शरीरों को याबेश में ले आए। ये बड़ी रोचक बात है क्योंकि शौल के राज्यकाल का आरंभ वहीं से हुआ था। वहां अमोनियों का राजा नाहाश आया और गिलाद के याबेश वासियों से आत्मसमर्पण की मांग की और कहा कि सब आदमी अपनी अपनी सीधी आंख निकालकर उसके सामने रख दे। अतः उन्होंने शौल से सहायता की पुकार की और वो इसराइल की सेना के साथ आया तथा उस आक्रमणकारी सेना का नाश किया। इस प्रकार गिलाद का याबेश शहर शौल के द्वारा बचाया गया था और यही वो बात थी जिसने एक तरह से शौल को ऊंचाई पर पहुंचाया और लोगों के द्वारा इसराइल के ऊपर राजा के रूप में स्वीकृति दी। उस समय तक वहां के लोग ऐसे लोग थे जो कह रहे थे, शौल हम पर राज्य करेगा, वो कौन है? और वहां के लोग शौल का विरोध कर रहे थे। परंतु जब वो गिलाद के याबेश को छुड़ाने आया और विजय पाने में इसराइल की सेना की अगुवाई की, तब वो लोगों की नजरों में आया और इसराइल पर राजा बन गया। अतः ये गिलाद वाले याबेश के निवासियों के लिए आवश्यक था कि वे आए और उसके शरीर को छुड़ाए। वे इसे अपना कर्तव्य और उन पर शौल का कर्ज समझते होंगे। शौल की सबसे बड़ी चूक ये थी कि उसने अमालेकियों का सर्वनाश करने की परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने उसे अमालेकियों के विरुद्ध निर्देश देकर भेजा था कि वो उनका पूरी तरह से सफाया करे। जब वो विजय से लौटा और शमूएल उसे मिलने आया, तो उसने शमूएल का सत्कार इन शब्दों के साथ किया था, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। ये एक बहुत बड़ा झूठ था। उसने वो सब कुछ नहीं किया था जिसे परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी थी। उसने अमालेकियों का संपूर्ण सफाया नहीं किया था। उसने उनमें से कुछ को जिंदा छोड़ दिया था। उसने कमजोर गाय बैलों को और बीमार भेड़ बकरियों को पूर्णतः नष्ट कर दिया था, परंतु उसने अच्छे से अच्छे गाय बैल और भेड़ बकरियां रख ली थी। उसने आगाग राजा को जिंदा बंदी बनाया और साथ में दूसरे अमालेकियों को जिंदा रख छोड़ दिया। पवित्र शास्त्र में कुछ दिलचस्प प्रतीक है, जैसा कि मिस्र जो एक तरह से हमारी पुरानी जिंदगी का प्रतीक है, वो इस संसार में पाप के बंधन में बंधे मनुष्य को दर्शाता है। लाल समुंदर एक तरह से बपतिस्मे का प्रतीक है। मैं अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर परमेश्वर के साथ नए संबंध में आता हूं। जंगल एक तरह से उस जीवन का प्रतीक है जो छुड़ाया तो गया, परंतु आज भी संसारिक देह उस पर प्रभावी है। प्रतिज्ञा की भूमि एक तरह से उस जीवन का प्रतीक है जो आत्मा से परिपूर्ण जीवन है। बाइबल के प्रतीकात्मक चिन्हों में अमालेकी एक तरह से शारीरिक जीवन की तरह है। पवित्र शास्त्र में ऐसी कई जगह है जहां अमालेकी एक तरह से शरीर और शारीरिक जीवन के रूप में बताए गए हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने अमालेकियों के संपूर्ण विनाश की आज्ञा दी, परमेश्वर एक तरह से शरीर के संपूर्ण विनाश की आज्ञा दे रहा था। रोमियो 8 में लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, अर्थात देह के कामों को मारना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर ने आपकी देह के पुनरुद्धार के लिए कोई विशेष योजना विकसित नहीं की है। आपकी देह के लिए परमेश्वर का केवल एक ही आदेश है, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। बाइबल कहती है, देह को अपनी लालसाओं की पूर्ति का स्थान न दो। परमेश्वर ने इसके संपूर्ण विनाश की आज्ञा दी है। ये आपके ऊपर प्रभुता करने न पाए। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को वश में करो ताकि आप जीवित रहे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। परमेश्वर आपके देहिक कार्यों को ना तो सुधारना चाहता है, ना ही उनका परिवर्तन करना चाहता है। उसने स्पष्ट कहा है, उन्हें कोई स्थान ना दो, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दो। अतः आत्मिक रूप से अमालेकियों के संपूर्ण विनाश की आज्ञा आत्मिक परिपक्षय में एक महत्वपूर्ण आज्ञा है। जब हम दूसरे शमूएल के पहले अध्याय में आते हैं तो हम सचमुच कुछ बहुत दिलचस्प बात देखते हैं। अध्याय 1:1 में शौल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिगलाक में रहते हुए 2 दिन हो गए। यहां आप देखते हैं कि अमालेकी अब भी जीवित है। दाऊद को उनका अच्छा अनुभव था, क्योंकि वो अपने योद्धाओं को लेकर राजा आकिश के साथ युद्ध में सहभागी था। सिगलाक शहर जहां वो रहता था वो निर्जन पड़ा हुआ था। अमालेकियों ने आकर उस नगर को लूटा और जला दिया था। उनकी पत्नियों और बच्चों को उन्होंने दास बना लिया था। अगर शौल ने अमालेकियों का संपूर्ण विनाश कर दिया होता तो वे ऐसे नहीं कर सकते थे। अगर आप देह की क्रियाओं को नाश करने से छोड़ देंगे तो वो फिर से लौट आएगी। यदि आप उनके लिए पाँव रखने का स्थान भी छोड़ देंगे तो वे आपके जीवन नाश कर देंगी। अध्याय 1:1-10 तक दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए। तब 3rd दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शौल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उसे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इसराइली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शौल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शौल और उसका पुत्र योनातन मर गए। समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शौल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने ये भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं, उस देश का एक निवासी जिसके संपूर्ण सफाई की आज्ञा परमेश्वर ने शौल को दी थी। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने ये निश्चय जान लिया कि वो गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। अब यहां दो में से एक बात है। पहले शमूएल के आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शौल अपनी तलवार पर गिरा और मर गया। यह हो सकता है कि यह अमालेकी ये सोचकर शौल के बारे में यह कहानी बना रहा हो कि उसे दाऊद का पक्ष मिलेगा, क्योंकि उसने दाऊद के दुश्मन का नाश कर दिया है। सत्य तो यह है, शौल को दाऊद का दुश्मन कहना गलत होगा, क्योंकि दरअसल शौल कभी भी दाऊद का दुश्मन नहीं था। शौल ही दाऊद को अपना बैरी समझता था और वो सदा ही दाऊद का नाश करने के प्रयास में रहता था। वो दाऊद का विरोधी था। हो सकता है उसने ये सोचा होगा कि ऐसी कहानी बनाने से उसे दाऊद की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त होगा। हो सकता है कि ये सच हो, ये झूठ भी हो सकता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि शौल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा था, अपनी तलवार खींचकर मुझे भौंक दे, क्योंकि उसे तीर लग गया था। वो समझ गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वो नहीं चाहता था कि मरने से पूर्व फिलिस्ती आकर उसे पकड़े और उसे यातना दे। वो डरता था कि अगर वे उसे जिंदा पाएंगे तो अवश्य ही यातना देंगे। इसलिए उसने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि वो उसे मार डाले, लेकिन हथियार ढोने वाला ऐसा करने से डरा। अतः शौल ने अपनी तलवार अपने सामने खड़ी की और अपने आप को मारने के लिए उस पर गिर पड़ा। जब उसके हथियार ढोने वाले ने देखा कि शौल अपनी तलवार पर गिरकर मर गया है, तब उसने भी अपनी तलवार खड़ी की और उस पर गिर गया। ये हो सकता है ये जवान आदमी सच कह रहा हो, अपनी तलवार पर गिरकर खुद को मारने के बाद भी हो सकता है वो पूरी तरह से मरा न हो और अभी भी जिंदा हो, और वो इस जवान आदमी को देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? मैं एक अमालेकी हूं, कृपया मुझे मार डालो, मैं नहीं चाहता कि अमालेकी मुझे पकड़े और यातनाएं दे। ये हो सकता है कि इसने उसे मार दिया हो, या ये भी हो सकता है वो कहानी बना रहा हो। उसने शौल को मरा हुआ पाया होगा और उसके सर का मुकुट और कंगन ले लिया हो और कहानी बना दी। मैं नहीं जानता, यहां आपको अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया है, सच्चाई कोई नहीं जानता। फिर भी यहां एक दिलचस्प बात है। अगर सच में इस जवान आदमी ने शौल को मारा है तो ये हमारे शरीर के संबंध में एक दिलचस्प उपमा बनाएगा, और वो ये है कि अगर हम अपनी देह का संपूर्ण रीति से सफाया नहीं करते तो आखिर में देह हमें नष्ट कर देती है। अगर उसने अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता तो ये जवान अमालेकी लड़का उसे कभी मार नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की और अमालेकियों का पूरा सफाया करने की चूक से वे बचे रहे और एक जवान अमालेकी लड़के ने उसको मारा। ये सत्य है कि परमेश्वर ने देह को अर्थात शरीर की क्रियाओं या अभिलाषाओं को मारने के लिए कहा है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते और अपने इस शरीर को छूट देते और सहते रहते हैं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि इस शरीर के काम वापस लौट आएंगे और आपको नष्ट कर देंगे। शारीरिक जीवन के लिए कोई प्रयत्न मत कीजिए कि उसके पीछे चले, आत्मा के पीछे चले। अतः दाऊद जब उसे ये समाचार मिला तो वो रोया और उपवास किया, उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने शौल और योनातान की मृत्यु का विलाप किया। अध्याय 1 पद 11 से लेकर 14 तक। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े, दुख प्रकट करने का एक तरीका, और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और शौल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इसराइल के घराने के लिए छाती पीटते और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? अब एक बार फिर ये ध्यान देने योग्य बात है कि दाऊद के मन में परमेश्वर के अभिषेक के प्रति कैसे आदर था। उसका अभिषिक्त के प्रति ये सम्मान सराहनीय है। राजा बनने के लिए परमेश्वर ने शौल का अभिषेक किया गया था, इसलिए दाऊद ने उसे अवसर पाने पर भी नहीं छुआ। दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, यहोवा ही उसे मारेगा या वो लड़ाई में जाकर खुद ही मर जाएगा, और जैसा दाऊद ने कहा था, यहोवा ही उसे मारेगा या वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा, शौल के साथ ठीक वैसा ही हुआ। वो लड़ाई में मारा गया परंतु दाऊद ने उसे नहीं छुआ। मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषेक पर नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए जब वो जवान आया और उसने कहा, उसने मुझसे विनती की थी, मैंने उसे मार दिया, तब दाऊद कहा, परमेश्वर के अभिषेक को छूने से तो क्यों ना डरा? अध्याय 1 पद 15 से लेकर 20 तक। तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर अपनी तलवार से, क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषेक को छूने की हिम्मत की है। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। उसने सोचा था कि कोई शक नहीं, दाऊद मुझे आदर का स्थान देगा, हो सकता है कि उसके इस काम के लिए वो इनाम दे, और दाऊद ने उसे इनाम दिया, लेकिन वैसा नहीं जैसे उसने सोचा था। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने ये कहकर कि मैंने यहोवा के अभिषेक को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। तब दाऊद ने शौल और उसके पुत्र योनातन के विषय ये विलाप गीत बनाया और यहूदियों को ये धनुष नाम गीत सीखने की आज्ञा दी। ये याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इसराइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं। गत में ये ना बताओ, वो फिलिस्तीन का एक मुख्य शहर था, और ना अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, ये भी फिलिस्तीन के 5 मुख्य शहरों में से एक है। ना ही कि फिलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। उस युग में जब पुरुष विजयी होकर लौटते थे, तब जवान लड़कियां अपनी डफली या जांज लेकर बाहर आकर नाचती थी। वे उनके आगे आगे नाचती और गाते हुए चलती थी और युद्ध में जीतने और वीरता के लिए उनकी बड़ाई करती थी। दाऊद फिलिस्तियों के शहर में चल रहे इस उत्सव को अपने दिमाग में देख सकता था, क्योंकि उनका वीर राजा शौल और दाऊद का प्यारा दोस्त योनातन मारे गए थे। इसलिए वो रोता और कहता है, गत में ये ना बताओ और अश्कलोन में प्रचार ना करना, ना हो कि फिलिस्तियों की बेटियां नाचे और आनंद मनाए। तब वो गिलाबो पहाड़ की तरफ मुड़ा जहां शौल मरा था और कहा, अध्याय 1 पद 21 से लेकर 23 तक, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेद के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूर वीरों की ढाले अशुद्ध हो गई और शौल की डाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूर वीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष लौट न जाता था और न शौल की तलवार छूची फिर आती थी। शौल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मन भाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। तुम पर आसमान से ना तो ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना गेहूं का फसल उपजे। उसने गिलबो पहाड़ को ये श्राप दिया क्योंकि शौल वहां मारा गया था। ये बहुत दिलचस्प बात है। आप आज इसराइल जाकर गिलबो पहाड़ को देखिए, ये उजाड़ या बांझ है, केवल पत्थरों का पहाड़। इसके चारों ओर की पहाड़ियां सुंदर हरे पेड़ों से घिरी है, लेकिन गिलबो अपने बांझपन के कारण एकदम अलग है। मैं समझता हूं कि इसराइली लोगों ने इस भविष्यवाणी को पूरा करने में सहायता की होगी, क्योंकि सारे इसराइल में जंगल का सुधार करते समय उन्होंने लाखों पेड़ लगाए, लेकिन गिलबो पहाड़ पर वे कोई पेड़ नहीं लगाते हैं। हो सकता है कि दाऊद के इस विलाप के कारण हो। अतः ये दिलचस्प है कि आज भी गिलबो पहाड़ दाऊद के इस विलाप को पूरा करने के लिए बांझ है। गिलबो को देखना और उसके बांझ को देखना हमेशा एक तरह से दिलचस्प है। फिर ये याद करना, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो और ना भेद के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। तब वो इसराइल की पुत्रियों को संबोधित करता है, अध्याय 1 पद 24 से लेकर 27 तक, हे इसराइली स्त्रियों, शौल के लिए रो, वो तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। अब यहाँ कुछ भ्रष्ट दिमाग के लोग हैं जो कहते हैं कि दाऊद और योनातान के बीच समलैंगिक संबंध था क्योंकि दाऊद ने ऐसा विलाप लिखा। ऐसी बातें कूड़ा करकट है और कुछ नहीं, ये वचन की निंदा है। इब्रानी धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाए।